Şetici. Şetici. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं को हमारा सप्रेम नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम की एक और कड़ी लिए हम उपस्थित हैं, जिसमें समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ समय पहले विश्व हिंदी सचिवालय में हमने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया। इस तहत अनेक गतिविधियों का आयोजन विश्व हिंदी सचिवालय में हुआ और इस तहत अनेक हमारे माननीय गण जो हैं विभिन्न देशों से जो है यहाँ पर उपस्थित हुए। उनमें से एक हमारे साथ हैं जो भारत से आई हुई हैं, आप हैं डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल जी। उनकी पुस्तक का विमोचन इस हिंदी दिवस के अवसर पर हुआ। उनकी पहली पुस्तक जिसका शीर्षक है कुली से कुलीन बनने का सफ़र। और सबसे पहले हम स्टूडियो में डॉक्टर दीप्ति जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
बहुत बहुत आभार शशि जी और माधुरी रामधारी जी का भी।
चलें, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपकी पुस्तक जो है ये हिंदी दिवस के अवसर पर जो आयोजन हुआ उसमें उसका विमोचन हुआ।
हाँ जी।
और ये विषय जो है काफ़ी हद तक जो है भारत से बाहर जितने भी हमारे प्रवासी गिरमिटिया कुलीजन जो थे वो गए थे, कहीं ना कहीं कुली नाम से ही वो उन्हें जोड़ता है। आपकी ये पहली पुस्तक रही कुली से कुलीन बनने का सफ़र। मैं चाहूँगी आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कैसे ये सफ़र आपने शुरू किया, पहली पुस्तक की प्रेरणा आपको कैसे मिली, थोड़ा इसके बारे में आप हमें बताएं।
मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की है और मेरी पीएचडी का ये विषय था गिरमिट श्रमिक, अनुबंधित श्रमिक, और जो 6 देश लिए जिसमें मैंने फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, गयाना, दक्षिण अफ्रीका।
और स्वाभाविक है इन्हीं देशों में ज़्यादा हमारे भारतीय जो मजदूर थे वो गए थे।
जब इस बारे में जब मैं शोध की पुस्तकें पढ़ रही थी, साहित्य पढ़ा, मैं बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गई थी। और आप ये मानिए कि एक कुछ दिनों तक तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही थी।
अच्छा।
हाँ जी। जब इतना शोषण
को लेकर, हाँ शोषण,
जब इतना शोषण और इतना, मतलब इतिहास में हमें कभी पढ़ाया नहीं गया था
ये, सही आप कह।
हाँ, तो ये बड़ा अफसोस लगा था कि हम कॉलेज लेवल तक हम पढ़कर इतिहास पढ़ा हमने और हमें इतिहास में एक लाइन भी नहीं पढ़ाई गई इस बारे में, जबकि कितना बड़ा डायस्पोरा ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा कि उन मजदूरों की दुखदी रक्त के रक्त जो है उसके बारे में कभी किसी ने
नहीं
इतिहास में नहीं जोड़ा तो। और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं कहना चाहूँगी आपने जब कहा कि देश भारत से बाहर हमारे इन मजदूरों ने हमको आज गौरव दिलवाया।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और उनका कहीं जिक्र ना हो ये अपने आप में बहुत
बहुत बड़ी बात,
बहुत बड़ी बात है।
हाँ जी। और जब मैं अपने रिसर्च के लिए इन देशों की यात्रा पर गई, ट्रिनिडाड, सूरीनाम, गयाना, तो मैं अपने मन की बात आपको बता रही हूँ। जो ये लाइफलेस द्वीपों वाली जो मैंने हेडिंग दी, लाइफलेस द्वीपों से लाइफ से भरे भारत से जब वो गए। हाँ। और लाइफलेस द्वीपों में तो उस समय वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, जो बिल्कुल वहाँ और अनजान अनपढ़ सीधे साधे भोले, और उनको बहला फुसला कर या झूठ बोलकर या भरमा करके ले जाया गया और वहाँ एक तरह से ले जाकर पटक दिया गया। तो आप मानेंगे जब मैं नेल्सन आइलैंड पर मैं जब गई ना, तो मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उस वक्त मतलब मैं बहुत रात को मैं बहुत रोई कि कितना शोषण हुआ उनके साथ में।
और ये बात तो हम मॉरिशस के इतिहास से भी सुनते भी हैं, देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं।
और अप्रवासी घाट पर जब आप जाते हैं तो वहाँ जो कदमों के निशान बने हुए हैं तो वो देख करके लगता है।
और उनकी जगहें जहाँ वो एक एक कमरे में पता नहीं कितने
कितने कितने लोगों
को रखा जाता था और कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं,
लेकिन उनकी जिजीविषा, उनके श्रम और उनकी जो उन्होंने अपने बच्चों को बचत करना सिखाया, धर्म, संस्कृति और भाषा का जो पाठ पढ़ाया, उसका नतीजा जो मैंने कुलीन जो शब्द इस्तेमाल किया कि आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आर्थिक रूप से सारे जितने भी ऊंचे पद हैं सब पर जो भारतवंशी विद्यमान हैं, ये उनको हैट्स ऑफ है। और ये एक हम सभी भारतीयों को भी ये सीखने वाली बात है कि अगर आप अपने नैतिक मूल्य, अपनी
संस्कृति
और सबके साथ अगर आप चलते हैं भाषा को, तो ऐसा नहीं है कि आप टाइम जरूर लगता है लेकिन आप आगे पहुंच सकते हैं।
अपनी जड़ों को आप मजबूत रखते हैं, उससे बंधे रहते हैं। ये आपने बहुत अच्छा कहा। अच्छा, ये कुली से कुलीन का सफर जब आपने कहा, आपका तो विषय ही ये रहा, तो मैं समझती हूँ आपने बहुत सा जो अध्ययन किया होगा कि किस तरह से अप्रवासी जो है अन्य देशों में स्थितियां चाहे अलग रही, स्थितियां चाहे अपने अपने देश के हिसाब से रही, लेकिन शोषण बिल्कुल बरकरार रहा, सब पर बरकरार रहा, और उसको देखकर कभी कभी इंसान दहल उठता है,
दहल उठता है, और ये भी सोचता है कि इतना बर्बर भी कोई हो
सकता है। हाँ, बिल्कुल
ना, इतना बर्बर। ये पढ़े लिखे समाज जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, हाँ, वो कितने बर्बर थे।
हाँ, घोड़ों की बरसात और नीचे ऊपर आसमान न छत।
हाँ, और शशि जी, मतलब कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें मैं आज भी अभी कविताओं में नहीं लिख पाई हूँ और चित्रों में भी नहीं करवा पाई हूँ। जैसे एक घटना पढ़ी थी मैंने कि वो उस वक्त मजदूरों को कोड़ों से मार करके और गन्ने का रस उनके शरीर पर लगा देते थे और उन्हें बांध देते थे, और जो लाल चींटियां होती थी वो सारा मांस नोच के खा जाती थी।
बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो सुनकर ही इंसान जो है वो देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
रोंगटे खड़े। आज भी हम तो मैं उनको आज भी मैं कविता में नहीं लिख पाई।
अच्छा, तो ये कविताएं जो हैं ये आपके अनुभवों का एक, मैं कहूंगी एक प्रसाद है।
हाँ जी, प्रसाद है, और बहुत सारी सच्ची घटनाएं हैं, दस्तावेज है एक तरह से। अच्छा, बहुत सारी जो मैंने केस हिस्ट्रीज पढ़ी, बहुत सारी सच्ची घटनाएं इतिहास की जो पढ़ी, उनको कविता में ढाला ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सारी उनको जान पाएं, उनके पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया और जो आज वो इतना एंजॉय कर रहे हैं वो उसका जो मतलब उनके संघर्षों का परिणाम है। तो इसलिए उनकी काफ़ी सारी रियल कहानियाँ, अधिकतर तो रियल स्टोरीज हैं, और काफ़ी कुछ जो मुझे वहाँ लोग मिले और जो उन लोगों ने अपनी कहानियाँ अपनी दादी नानी की वो सुनाई, काफ़ी कुछ उनके ऊपर है।
अच्छा देखिए, वैसे पढ़ते तो आजकल तो मैं समझती हूँ एक ट्रेंड में आ गया है कि प्रवासियों के क्या खोज अध्ययन करना जो है, लेकिन उसके बाद पुस्तक की ओर कैसे आपको प्रेरणा मिली कि उसको कैसे बांधा जाए पुस्तक में?
पुस्तक ऐसा हुआ, जब पहली कविता लिखी तब कोई योजना नहीं थी पुस्तक भी, क्योंकि मैं तो बस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी। अच्छा। और वो फिर कविता के रूप में होता है ना, विरेचन हुआ कि हाँ, तो वो धीरे धीरे जब आने लगी। फिर एक बार लंदन में म्यूजियम में हम घूम रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे गलीचे लगे हुए थे जिन पर अलग अलग घटनाएँ बनी हुई थी, कोई गाँव की कोई ऐसे सब, तो लेकिन लिखा हुआ कुछ नहीं था।
अच्छा,
तो मैंने मेरे साथी से कहा कि देखो अगर कुछ थोड़ा लिखा होता ना तो हम ज्यादा अच्छे से जुड़ पाते
और जानते
कि क्या है और कौन से देश की है, कौन से काल की है। तो जब हम बाहर आ रहे थे तो मैंने मेरे पति से कहा कि देखो मेरे पास बहुत सारी कविताएं हो गई हैं कि जो सच्ची घटनाएं और दस्तावेज पर हैं, अगर मैं उनको चित्रों में रूपांतरित करवा लूं, और चूंकि मैं उन सब देशों में गई हूं, चार देशों में, और वहां बहुत सारे आर्काइव की मेरे पास फोटोज़ हैं, बहुत सारी कल्पनाएँ हैं, बहुत सारी सच्चाइयाँ मुझे पता है, तो उनको चित्रों में रूपांतरित करें तो ये कैसा रहेगा? तो वो ऐसे चित्रों में रूपांतरण वाली बात आई और धीरे धीरे कविताएं बढ़ती गई। तो फिर जो मेरे आप जैसे जो साथी हैं, शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा कि तुम इतनी सारी कविताएं हो गई हैं तो इनको पुस्तक के रूप में लाओ, और जो इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे डिफिकल्ट वर्ड्स तो नहीं, जैसे गिरमिट था, तास था, कुलंबर था, तो बहुत लोगों को इनके मतलब नहीं पता है, तो एक छोटी सी जो भी तुम्हारी कविताओं में जो ये शब्द आए हैं तो एक वोकैबुलरी दो, और कौन सी कविता किस घटना से प्रेरित हुई तो वो डिटेलिंग तुम दोगी तो ये बहुत रिसर्च बन जाएगी।
और स्वाभाविक है जब वो विभिन्न देशों में गए तो कि वहां की स्थानीय भाषा से वो शब्द वहां स्पेसिफिक जुड़े हैं, और जो कि हमारे भोजपुरी को अलग अलग जो है थोड़ा सा उसमें विभिन्नता दिखाते हैं।
सूरीनाम में डच के शब्द थे और इधर वहां पर इतना कोई है, फिजी में इतना कोई है। हाँ जी, तो वो
मॉरिशस में फ्रेंच के कुछ शब्द जो है भोजपुरी
क्रियोल है।
हाँ बिल्कुल, क्रियोल के जो शब्द,
दक्षिण अफ्रीका में भी क्रियोल के बहुत सारे शब्द हैं, उनकी सुहेली भाषा है उसके शब्द हैं।
तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपने कभी सोचा था कि आपकी पुस्तक का विमोचन मॉरिशस में होगा?
मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब मैं बहुत माँ सरस्वती की और आप सभी लोगों की और अपने भी पूर्वजों की, और मतलब मेरे को मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में जरूर गिरमिट रही होंगी। बहुत आभारी हूँ सबकी कि कभी नहीं सोचा था मैंने कि
और इतना बड़ा सम्मान मिलना भारत से बाहर आपकी पुस्तक का, और जिस तरह से माहौल जो बंधा है उससे आपको काफी प्रसन्नता हुई।
बहुत बहुत,
और मेरे को लगता है इस कुली से कुलीन बनने का सफर जो है आपके परिवार के लिए और आने वाली जो नई पीढ़ी है वो श्रमिकों के उस संघर्ष को इसमें चित्रित करा है वो उसको बताएंगे और उनको एक नई दिशा मिलेगी आगे अगर वो और काम करना चाहेंगे इसमें, तो भी मैं समझती हूँ ये पुस्तक उनके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगी। मैं ये भी जानना चाहूँगी इसके बाद क्या इसको आग जैसे आपने कहा कि चित्रित नहीं कर पाए, सिर्फ कविताएं हैं, तो क्या
कुछ चित्र हैं,
कुछ चित्र भी हैं,
16 चित्र
जो हैं वो आपने जोड़े हैं। जब आपने स्वाभाविक है शोध कार्य इस पर किया है इतना बड़ा, तो उसमें तो बहुत सी चीज़ें आपने कलेक्ट की होंगी, बहुत सी चीज जो है वो जोड़ी होंगी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या इसका पार्ट 2 भी निकल सकता है?
हाँ जी, अभी कविता इसमें 60 कविताएं हैं, अभी कविताएं तो निरंतर लिखी जा रही हैं, तो अभी बहुत सारी कविताएं जो इसमें नहीं है वो आने वाला समय बताएगा।
अच्छा।
और अभी जैसे मेरे बहुत सारे गिरमिटियों पर बहुत सारे लेख छप गए हैं, 30 अच्छा। से ज्यादा लेख छप गए हैं,
तो उन लेखों को
अभी मैं किताब में रूपांतरित कर रही हूँ। और एक और अच्छी बात, मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं विदेशी जो ट्रिनिडाड सूरीनाम में, उनको देवनागरी नहीं पढ़ पाते हैं वो, तो उनके आग्रह पर अब इसका इंग्लिश रूपांतरण भी आ गया।
ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से हमारे विदेशों में लोग हैं जो उनके लिए ये
देवनागरी पढ़ना मुश्किल है।
हाँ। लेकिन वो लोग इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर आप इसका इंग्लिश में वर्जन निकाल
है इंग्लिश में, अभी जो दिल्ली में बुक फेयर लग रहा है 10 तारीख को, उसमें वो वहां पर होगा।
अच्छा,
इंग्लिश का।
तो मैं आशा करती हूँ और आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आगे बहुत जल्द इस पुस्तक का जो आगे का जो भाग है वो भी बहुत जल्द प्रकाशित होगा, और आप जो है इस सफर के लिए जो है आगे अपने आप को तैयार तो कर चुकी हैं, कहने की जरूरत नहीं है, अंदर से आपकी अनुभूतियां हमेशा के लिए जागृत रही हैं, जैसे कि आपके अपनों ने कहा है कि आप कहीं ना कहीं गिरमिटियां जरूर हुई होंगी, तो कहीं ना कहीं उसका रंग जो है वो दिखाई देता है पुस्तक में, तो वो आपको कहीं ना कहीं सहज बना पाता है। एक पुस्तक को लिखना कोई आसान काम नहीं होता है, तो मैं इसके लिए आपके लिए बहुत दुआएं करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आप आगे इसके लिए कदम बढ़ाती रहें और हमारे श्रोताओं को और पाठकों को जो है और पढ़ने का दें। मैं अंत में आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर मॉरिशस में आपका, क्योंकि पिछली बार भी हम मिले थे आपसे ही मैंने गुफ्तगू की थी, तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा, थोड़ा सा यहाँ का अनुभव बताएं।
देखिए, पिछली बार जब मैं पहली बार मॉरिशस आई थी तो बहुत सारी कल्पनाएं अलग थी, और आकर के एक होता है ना, आप अपनी कल्पना में बहुत कुछ अलग सोच रहे होते हो, लेकिन आकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मिनी भारत में आई हूँ। मैं एक दो अपनी अनुभव बताना चाहूँगी। एक मुझे वहाँ जब हम परी तालाब में घूम रहे थे तो एक अम्मा जी थी, तो वो मुझे बहुत ही स्नेहिल सी लगी, मैं उनसे बात करने लगी और मैंने उनके पैर छू लिए, तो उन्होंने मुझे कहा दूधो नहाओ पूतो फलो। मैंने कहा ये आशीर्वाद तो भारत में देते हैं सब।
तो मतलब ऐसे छोटे छोटे अनुभव बहुत आपको बाहर
तो
जाने पर मिले।
हाँ जी,
तो मैं आशा करती हूँ आपके लिए और बहुत बहुत आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा यूं ही मिलती रहे। इसके लिए, इस छोटी सी बातचीत के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी और हार्दिक बधाइयां आपकी इस पुस्तक के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद
बहुत
आपको
बहुत आभार।
भारत से आप आई हमारे श्रोताओं के समक्ष जो हमने इसका परिचय दिया कि कुली से कुलीन बनने का सफर कहीं ना कहीं हद तक हमारे मॉरिशियन वासियों को जोड़ता है और दिल से जोड़ता है,
और आने वाली पीढ़ी से आग्रह है कि वो जरूर पढ़े इसको, ताकि वो जाने अपने पूर्वजों के श्रम को, जिजीविषा को,
बिल्कुल
जरूर पढ़े इसे।
बहुत तो चले आपसे विदा लेते हैं, क्षितिज कार्यक्रम की का समय यहाँ पूरा हो रहा है। श्रोताओं, एक और कार्यक्रम तक के लिए हम आज्ञा लेने से पहले अपने तकनीकी सहयोगी यूसुफ का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।